الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج سبق آموز خبروں میں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
زوردار دھماکے کے بعد راکھ اور پتھر دور دور تک جا گرے، جبکہ پہاڑی سے لاوے کا اخراج شروع ہو گیا۔
22 مئی کو ہونے والے آتش فشاں کے دھماکے میں تقریباً 2500 مکانات تباہ ہو گئے۔
WHO کے مطابق دنیا میں 29% مرد اور 9% عورتیں تمباکو نوشی کرتے ہیں۔
یہ جو زمین کے اندر آپ کا جب سب سے اوپر والی سرفیس جس پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس کو ہم لوگ کرسٹ کہتے ہیں، اس کے نیچے ہوتا ہے مینٹل کے اندر ہوتا ہے،
جس سے ان کے ذہن پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچے کی غذائی عادات جو اس کی ابتدائی عمر میں ڈالی جاتی ہیں وہ اس کے موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اوکاڑا شہر اور گرد و نواح میں شدید طوفان اور تیز بارش سے مختلف حادثات میں 14 افراد جان بحق ہو گئے۔ سندھ میں ڈہرکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم، 50 سے زائد افراد جان بحق، 100 سے زائد زخمی۔
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو ہے FGRF کی طرف سے سپورٹنگ مل جائے، ٹرینیں ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔
سب سے پہلے ڈھیرکی کے قریب ہونے والا جو ٹرین کا افسوسناک حادثہ ہے، اس کو ہم سبق آموز خبروں میں شامل کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی افسوسناک صدمہ دینے والا واقعہ ہوا، اور 2 ٹرینیں جو آپس میں ٹکرا گئی ہیں، اور اب تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق 50 سے زائد افراد یہ دنیا سے چلے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعے کے متعلق آئیے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔
سندھ میں ڈہرکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں تصادم، 50 سے زائد افراد جان بحق، 100 سے زائد زخمی۔ حادثے کے بعد جائے وقوع پر فوراً ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔
الحمدللہ دعوت اسلامی FGRF کے نوجوانوں نے یہاں پر پہنچ کر زخمیوں کی مدد کی اور ریسکیو عملے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی عاشقان رسول سے عرض ہے کہ فوج شدگان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کریں۔
زخمیوں کو مختلف ہاسپٹلس میں منتقل کیا گیا، جہاں کچھ شدید زخمی مسافروں کی حالت نازک ہے۔ کئی مسافر گھنٹوں تک بوگیوں میں پھنسے رہے اور زخموں کی تاب سے چیخو پکار کرتے رہے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق حادثے کے بعد ملت ایکسپریس کی 8 اور دوسری ٹرین کی انجن سمیت 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جبکہ کچھ بوگیاں کھائی میں جا گریں۔ ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودا، جبکہ سامنے سے آنے والی ٹرین راول پنڈی سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی دوسری ٹرین کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ رات 3:40 کا وقت تھا، حادثے والی ٹرین کے ڈبے گرے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر بریک لگانے کی کوشش کی لیکن گاڑی نہیں رکی۔
اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ میں اس حادثے میں جو بھی مسلمان انتقال کر گئے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے، سب کو طریق رحمت فرمائے۔ اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو زخمی ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، ان کے زخم جلد از جلد درست ہو جائیں، ایک صحت مند، اچھی، نیکیوں بھری، طویل زندگی اللہ انہیں عطا فرمائے۔ اور میں تمام لواحقین جو ہیں، جن کے عزیز اقارب جو ہیں، جن کے لوگ انتقال کر گئے، ان کے عزیزوں سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو صبر بھی دے اور صبر پہ اجر بھی عطا فرمائے۔ اس واقعے کی جب خبر امیر سنت کو پہنچی تو ایک آپ نے ایک دعایا پیغام بھی دیا، اس کے ساتھ ہی جو امیر سنت نے ایک دعایا پیغام اور جو ایک ویڈیو چلی تھی وائرل بھی ہوئی، اس میں آپ نے FGRF کے اسلامی بھائیوں کو بھی ایک تاکید فرمائی۔ وہ کیا تاکید تھی، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔
دعوت اسلامی کے ویلفیئر کے شعبے FGRF کے تمام اسلامی بھائی जो कुर्बो जवार में शक्कर के और लड़की के, वो मेहरबानी करके जल्दी जल्दी पहुंचे और अपने इन दुखियारे भाइयों और आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत में लग जाए। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा।
तो माशाल्लाह दावत इस्लामी के शोबे एफजीआरएफ के इस्लामी भाई भी पहुंचे और इस परेशान हाल जो लोग थे इनकी किस तरह कोशिश की गई मदद करने की, वो भी इंशाल्लाह आपको बताने हम जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हमारे लिए, बड़ा इसमें दर्स भी है, बड़ा इसमें हमारे लिए सबक भी है कि ट्रेन के हादसा जो हैं, इस ये कोई पहला हादसा भी नहीं है। दुनिया में ट्रेन के हादसा होते रहते हैं और मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन सालाना ईयरली मोर देन 5,000 से ज़्यादा लोग ये ट्रेन हादसों में हलाक हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और एक और तज़िया इस तरह का भी मिला है मुझे कि एक्सीडेंट जिसको कहते हैं, एक्सीडेंट में हर 100 मिनट में एक हलाकत दुनिया भर में होती है और वो इतनी ज़्यादा बाद वक़्त हलाकतें हो जाती हैं कि अल्लामान वालफीस। तो ज़ाहिर है कि ये एक अफसोसनाक और अलमनाक वाकिया हुआ। कभी जहाज़ के गिरने का वाकिया हम सुनते हैं, कभी ट्रेन के हादसे का वाकिया सुनते हैं, तो कभी कारें आपस में टकरा जाती हैं, कभी बस खाई में गिर जाती है। इसमें हमारे लिए सबक है, इबरत है कि जो जा रहे होते हैं डेफिनेटली एक इनका किसी के जहन में भी नहीं होता कि मैं जो भी मतलब एक मोबाइल कहने को कह रहा हूँ कि ओवर तो बहुत कम लोग होते होंगे जो इसके एक मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते होंगे कि हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र, हो सकता है खुदा ना खासा कुछ हादसा हो जाए तो मैं तौबा कर लूँ, इस्तग़फ़ार कर लूँ, कुछ इस तरह की तरकीब करके निकलूँ। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, बड़ी मतलब कि हम एक अपने धुन में सफ़र करते हैं। हालाँकि सफ़र के ताल्लुक से रफ़ीकुल हरमैन में बड़े प्यारे तरीके का लिखा हुआ है उसमें कि किस तरह मतलब कि हमें सफ़र करना चाहिए, नमाजें कौन सी नफल नमाज पढ़कर और कौन की सूरतें वगैरह पढ़कर हमें निकलना चाहिए घर से। तो इंशाल्लाह इससे खैर आफियत वाला मामला रहता है, घर से क्या पढ़कर निकलना चाहिए इसे भी खैर आफियत वाला मामला रहता है, जो किताबों में लिखा हुआ है इंशाल्लाह ताला इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्योंकि अभी तो जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो दुनिया से चले गए, जो ज़ख्मी अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि अब आप ट्रेन में नहीं बैठेंगे, आप जहाज़ में नहीं बैठेंगे, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे, तो बैठना है। और ये भी नहीं पता कि जो हम बैठ रहे हैं ये हमारा कोई आखिरी सफ़र होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन वाकयात हो रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमें इनसे इबरत भी लेनी चाहिए, सबक भी लेना चाहिए। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जब भी आप सफ़र की तरकीब बने, यानी घर से निकलते बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़कर घर से निकलना चाहिए। और ये घर से पढ़कर निकलेंगे तो इंशाल्लाह हिफाजत भी रहेगी, खैरियत भी रहेगी अल्लाह ने चाहा। और इस तरह तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए रहें, सवारी की दुआ पढ़ें, तजदीद ईमान कर लें, या अल्लाह अगर मुझसे कोई कुफर हो गया हो तो उसे तौबा करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा। इसी तरह दौरान सफ़र गुनाहों से बचें, जहाज़ों में या दीगर ट्रेनों में, अब तो बसों में भी बदकिस्मती के साथ फिल्में ड्रामे गाने बाजों का सिलसिला रहता है। ये हादसे हमें सीखने का मौका भी तो देते हैं ना, समझने का मौका देते हैं कि हादसा तो हादसा है ना, एक्सीडेंट इमीडिएट होता है, ठा करके गाड़ियाँ टकराती हैं, ब्रिज से गिर जाती हैं, खाइयों में चली जाती हैं, सब अचानक ही हो रहा होता है, शोर मशरा होता है, कोई बच जाता है तो कोई दुनिया से चला जाता है। तो जब उस वक्त तो बहुत क्या चांस मिलता होगा आदमी को। तो ये अगर पहले से ही हम जहन बना कर रखें, सफ़र के दौरान गुनाहों से बचें, नेकियां करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला खैर 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 का मामला रहेगा। एफजीआरएफ के इस्लामी भाई की क्या कोशिशें रही हैं, आइए वो भी सुनते हैं।
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا, ایف جی آر ایف کے ہمارے ذمہ داران پہنچ چکے ہیں اور 100 سے زیادہ کے ہمارے والنٹیئر وہاں کاموں میں مصروف ہیں, تو ریسکیو کرنے والوں کو, زخمیوں کو وہاں پر ان کی کچھ مدد کر رہے ہیں, ان کے کھانا پانی وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں. وہ لوگ جو صحیح و سلامت بچ تو گئے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنا سامان اٹھا کر وہ لوگ اپنے گھروں تک چلے جائیں. الحمدللہ ایف جی آر ایف کے تحت ایسے لوگوں کی ہم نے لسٹیں بنائی ہیں, 135 افراد کے نام ہمارے پاس آ گئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جو ہے ایف جی آر ایف کی طرف سے سپورٹنگ مل جائے, انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے اور ان کے جو اخراجات ہوں وہ ایف جی آر ایف کے تحت انہیں پیش کر دیے جائیں. انتقال ہو جانے والوں کے روایت کی تعزیت بھی کریں گے اور جو لوگ اس وقت مریض ہیں, جو اتنے زخمی ہیں, ان کو ان شاء اللہ عیادت بھی کریں. یاد رکھیں عیادت و تعزیت سنت ہے اور الحمد للہ ایف جی آر ایف اس سنت پر بھی عمل کرنے کا جذبہ رکھتی ہے.
صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں الحمدللہ کوشش کی گئی ہے اسلامی بھائیوں نے اپنے طور پر, اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہی ہے دکھیاری امت کی خدمت کی, اللہ ان سب کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. حاجی عبدالحبیب ہے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے لیتے ہیں اپڈیٹس کے ایف جی آر ایف کے تحت کیا کیا کوششیں کی گئیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی حاجی عبدالحبیب الحمد للہ, کیا آپ کے معلومات میں حضر؟
جب سے یہ حادثہ ہوا ہے ذمہ داران سے ہم رابطے میں ہیں اور اس کے بعد یہ چونکہ حادثہ جو ہے یہ شہر سے تھوڑا دور ہوا, یہ ریتی اسٹیشن کے قریب ہے جو کہ جو سمجھ لیجیے کہ پنجاب سے آئے تو سندھ کا سب سے پہلا ریلوے اسٹیشن بنتا ہے اور یہ دہرکی سے بھی کچھ آگے ہے, تو وہ ایک ایسا قربار ہوتا کہ علاقہ نہیں ہے, تو وہاں پہنچتے بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو ٹائم لگا. اور جیسے ابھی شفاعت بھائی بتا رہے تھے کہ 100 کے قریب والنٹیئرز وہاں موجود تھے اور چونکہ ریسکیو کا کام آرمی وغیرہ اور وہاں کی حکومتی تھا, انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا, لیکن صرف ان کو ملبے سے یا ٹرین سے نکالنا نہیں ہے, اس کے بعد بھی بہت سارے معاملات ہیں, مسافر ہیں, سامان نہیں بچا ہوگا, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا, گھر پہنچے کیسے تو اس کا کیا ہوگا. تو ہم نے کیش لے کر بھی ہماری ٹیمیں روانہ کی کہ جس کو ضرورت ہے ان کو کرائے کا پیسے دیں, ان کو کھانا کھلائیں, پانی پلائیں. اچھا پھر اب چونکہ زخمی بہت ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ رات تک ہی ہم یہ بھی فائنل کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو بلڈ دینے کی ضرورت ہے, بلڈ کی نیڈ ہے, ہماری ڈاکٹر مجلس بھی ان کاموں میں ایکٹیو ہوگی کہ جس میں انشاءاللہ مزید وہاں علاج معالجے میں اگر ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی یا ہاسپٹل کے لوگوں کی تو ہم مدد کر رہے ہیں. ہم کافی دنوں سے الحمدللہ کام کر رہے تھے کہ ہم اپنے والنٹیئرس کو, ماشاء اللہ آپ سے ہی سیکھا ہے کہ امن میں ہی جنگ کی تیاری ہوتی ہے, تو کچھ ایسے والنٹیئرز ہم پورے پاکستان میں تیار کر لیں کہ وہ اس طرح کے حادثات میں ہمارے حکومت کے اداروں کا ہاتھ بٹا سکیں, کیونکہ بعض اوقات اداروں کو بھی پہنچنے میں دیر لگتی ہے, ہمارے ذمہ داران تو پورے پاکستان میں پھیلے ہیں, تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ہزاروں ایسے اسلامی بھائی تیار کر لیں جو ریسکیو کے ٹرینڈ ہو جائیں, یعنی بلڈنگ گر جائے, اللہ نہ ٹرین کا حادثہ ہے, گاڑی کا حادثہ ہے, کوئی سیلاب آ جاتا ہے, تو لوگوں کو نکالنا کیسے, کیونکہ لوگوں کو نکالنا بھی نہیں آتا, نکالتے وقت بھی وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ چھوٹا زخمی بڑا زخمی ہو جاتا ہے, اس کی ڈیمیجز اور بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے وہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا, کراچی میں بھی ہوئی, دیگر شہروں میں بھی ہوئی ہے, انشاءاللہ اگلے چند ماہ ہمیں لگیں گے لیکن اللہ کرم کرے گا تو وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم یہ فیسلٹی دیں گے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ اسلامی بھائی ہوں گے جو کسی بھی حادثے کی صورت میں انشاءاللہ وہ پہنچ کر ریسکیو کا کام بھی کریں گے. اچھا
ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ اس طرح کے حادثات کی نوبت ہی نہ آئے.
ایک ڈبے میں بتایا گیا کہ پوری بارات تھی, دلہن اور باراتی سارے تھے اور اسی کے ساتھ بھی حادثہ ہوا ہے, اب میں اس میں باقی بچے ہیں تو واقعی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لوگ کہتے ہیں جہاز بڑا ڈینجرس ہے, ٹرین میں سفر کرنا چاہیے, آنی ہوگی تو کہیں بھی آ جائے گی, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر اور جس طرح آپ نے فرمایا توبہ کر کے دعائیں پڑھ کے ہی سفر کی ابتدا کرنی چاہیے.
غفلت کا دورہ ہے اور سفر میں بھی ہمیں موت یاد آتی نہیں ہے, جبکہ ایک سفر ہمیں واقعی موت کی یاد دلاتا ہے. جہاز میں بھی اچھی خاصی مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ موت کی یاد آتی ہے. اب ماحول کی بات ہوتی ہے دعوت اسلامی کے, تو الحمدللہ یہ نیکی کی دعوت کا ایک دینی ماحول ہے, وہاں پر تو اس طرح کی ہمیں سوچ دی جاتی ہے تاکہ مطلب کہ جب سفر شروع ہو تو گھر سے ہی دعا, ذکر و اذکار اور اس طرح معافی تلافی وغیرہ کر کے نکلا جائے کہ کیا پتہ یہ سفر آخری سفر ہو.
माशाअल्लाह सोजल सिलसिला सबक अमोज खबरें बहुत अच्छा है। निगारे शुरू शहर से जब कभी ऐसा हादसा होता है या ट्रेन का हादसा हो या कोई भी हादसा हो तो लोग जो है फौरन वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इस हवाले से कुछ मदरी फरोशा फरमाई कि वहाँ मौजूद लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, क्या वीडियोज बनानी चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए, और इस हवाले से मजीद कुछ मदरी फरोशा फरमा दें कि फौरन तौर पर लोगों को क्या करना चाहिए।
जाहिर है कि उस वक्त जो लोग जख्मी हैं या जो भी वहाँ के जो हालात हैं तो उसके मुताबिक तो उनको उस बात से क्या गरज है कि आप उनकी मूवी बना रहे हैं, उनको तो हेल्प ही चाहिए, मदद ही चाहिए, उनको तो इस परेशानी से किसी सूरत निकाला जाए। और बाकायदा कोई ज़रूरत की जैसे कि कोई ऐसा इदारा है या कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें फौरन वहां के मनाजिर भेजने हैं कि भाई यहाँ ये हालात है, वो एक अलग है, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेजेस पर लगाने के लिए कि सर हमारी वीडियो पहले लग जाएगी, हमारे इमेजेस पहले लग जाएंगे तो हमारे लाइक्स बढ़ जाएंगे, ये दुरुस्त नहीं है। उम्मत की खैरख्वाही का अल्लाह हमें जज्बा नसीब फरमाए, और अद्दीन व नसीहा दीन खैरख्वाही का नाम है, दीन भलाई का नाम है। तो ये तो और प्रैक्टिस हो रही है ये इस तरह की हरकतें, लेकिन करना नहीं चाहिए ये, मतलब उस टाइम पर तो बाकायदा हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके वो तकलीफ में मुब्तला लोगों की तकलीफ को दूर करने में कामयाब हो जाए। ये रफ़ीकुल हनमैन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, मैं चाह रहा था कि अगले सेगमेंट या वीडियो की तरफ जाने के साथ साथ पहले मैं आपको रफ़ीकुल हनमैन से वो बातें बयान कर दूं जो सफ़र के वक्त बहुत ज़रूरी हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये देखिए पेज नंबर है 40-41। एक तो ये ज़रा दिखाइएगा, ज़रा क्लोज कीजिएगा प्लीज़। एक तो ये पेज नंबर 40 पर ये दुआ है, ये दुआ इंशाल्लाह जहाज़ में जब जहाज़ में बैठे दुआ पढ़ लिया करें, और फिर उसके बाद आप यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ भी दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं। तो यहाँ लिखा है मिल सुन्नत ने कि रेल या बस या कार वगैरह में बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह सब तीन बार, ला इलाह इल्लल्लाह एक बार, फिर ये कुरानी दुआ पढ़िए, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल सवारी हर किस्म के हादसे से महफूज रहेगी। दुआ ये है, सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ हमारे यहाँ तो दावत इस्लामी में कह सकता हूँ कि कई बच्चों को याद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ सफ़र की दुआ मशहूर है, ये पढ़ लेनी चाहिए। जब किसी मंजिल पर उतरे तो दो रकत नफल पढ़ें कि अगर वक्त मकरू ना हो तो सुन्नत है। ये भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ा ही सबक कामोश बात यह मौजूद है। दूसरा ये है कि चलते वक्त ये दुआ पढ़ें, ये दुआ पेज नंबर 39 पर। अब चूंकि एक मौजू है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ। लिखते हैं मेरे सुनो, जब सफ़र पर जाने लगे तो इस तरह रुखसत हो जैसे दुनिया से रुखसत होते हैं, चलते वक्त ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसा इस्सफरी वकआबतिल मुनक़लबी वसूइल मनज़री फिल माली वल अहली वल वलद। वापसी तक माल और अहलो अयाल महफूज रहेंगे। लिबास सफ़र पहनकर, यानी सफ़र के लिए निकलते वक्त जो आपने कपड़े पहनने, लिबास सफ़र पहनकर अगर वक्त मकरू ना हो तो घर में चार रकत नफल अलहम्दु और कुल से पढ़कर बाहर निकलें। वो रकतें वापसी तक अहलो माल की निगेबानी करेंगी, हिफाजत करेंगी। घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी और कुल या अय्युहल काफिरून से कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक तब्बत के सिवा 5 सूरतें सब बिस्मिल्लाह के साथ पढ़िए, आखिर में भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रास्ते भर आराम रहेगा। नीस उस वक्त इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआना लरादुका इला माद, ترجمہ کنزلیمان، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو، ایک بار پڑھ لے بالخیر واپس آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو اللہ توفیق دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حادثہ، افسوسناک حادثہ، ہمیں جو سیکھنا چاہیے وہ سیکھ لیں۔ میرے آگے پروگرام ہیں، ویڈیوز ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ تک میں یہ بات پہنچا، یہ سیکھ لیں۔ ایک تھوڑا سا تازہ ہوتا ہے، لوگ خبریں وغیرہ دیکھتے ہیں اور نیوز وغیرہ کے تعلق سے معلومات دیتے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، ایک یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن آج آپ اور میں سواری پر سوار ہو سکتے ہیں، کل بھی آپ کو مجھے سواری پر سوار ہونا پڑ سکتا ہے، ہمیں بھی سفر درپیش ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں اور قرآن، حدیث اور بزرگوں کی بتائی باتیں ہیں، جس پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو خیر و عافیت رہے گی۔ تو یہ پیج نمبر 39 رفیق الحرمین، پیج نمبر 39 سے آپ پیج نمبر 41 تک پڑھ لیں، بلکہ پیج نمبر 42 کو بھی پڑھ لیں، یا سمدو 134 بار روزانہ پڑھیے، بھوک اور پیاس سے امن رہے گا۔ دیکھیے، یہ سفر کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری اس میں ہدایات موجود ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چرے کے ناظرین، آئیے دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری خبر جو میرے پاس موجود ہے وہ بچوں کے تعلق سے ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کو شروع سے ہی کچھ اس طرح کی غذائیں دی جاتی ہیں جو آگے جا کر ان کے لیے بڑی نقصان کا باعث بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں۔ وہ خبر کیا ہے، آئیے پھر اس کی رپورٹ دیں۔
موٹاپے کی جڑیں زندگی کے پہلے سال سے جڑی ہوتی ہیں، نئی تحقیق۔ بچے کی ابتدائی سال اس کی زندگی کے اہم ترین سال ہوتے ہیں۔ اس کا دماغ ابتدائی سالوں میں قریب 80% تک مکمل ہو جاتا ہے۔ بچے کا مزاج اور مستقبل کی بہت سی عادات بھی تکمیل پا لیتی ہیں۔ ایک امریکی یونیورسٹی میں ہونے والی نئی تحقیق میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ بچے کی غذائی عادات جو اس کی ابتدائی عمر میں ڈالی جاتی ہیں وہ اس کے موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ماں بچے کے ابتدائی عمر میں ہی اس کو صحت بخش غذاؤں کی طرف مائل کرے، کیونکہ ابتدائی عمر کی عادات مستقبل میں اس کو موٹاپے اور دیگر مسائل سے محفوظ رکھیں گی۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سافٹ ڈرنک، چاکلیٹ، پروسیس فوڈ، مٹھائیاں وغیرہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صحت مند اشیاء جیسے پھل، سبزیاں وغیرہ دینے سے نہ صرف بچے کا وزن مستقبل میں قابو میں رہے گا بلکہ اس کی بہتر غذائی عادات بھی قائم ہوں گی جو اس کو بڑی عمر میں موٹاپے اور دیگر امراض سے محفوظ رکھیں گی۔
جی ڈاکٹر سلمان، اب اس رپورٹ میں جس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، مگر گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں اس کا کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے، یعنی الٹ سے مراد میری یہ ہے کہ جن باتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا جس کی وجہ سے بچوں میں پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں، وہ تو چیزیں گھر میں ہو رہی ہیں۔ اچھا، جو کہا گیا کہ یہ کریں گے تو صحت مند رہیں گے، اس طرف گھر میں بچوں کی طرف توجہ، بچے کھاتے بھی نہیں ہیں اور ہم کھلانے میں اتنی زیادہ شاید کوشش نہیں کر رہے ہوتے، اور آئے دن بچے صبح اٹھتے ہی جیلی کھولتے ہیں، چاکلیٹ کھولتے ہیں، چپس کھولتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھولتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے، مطلب کہ وہ صحت کو نقصان دینے والے جوسیز کے ڈبے کھول لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس معاملے میں جو پوری رپورٹ ابھی آپ نے دیکھی، آپ ہمارے ناظرین کو کیا ہدایت فرمائیں گے؟
سب اس میں جو ایک اسٹیٹسٹکس ہے وہ پبلشڈ ہوئی 2017 کے اندر، اور 1.6 بلین
کتنا ہوتا ہے؟
1.6 بلین سمجھ لیں 16 کروڑ، ہاں کم و بیش۔ یہ ٹوٹل پاپولیشن کے اندر لوگ جو ہیں اوبیسٹی کی طرف ہیں، یعنی موٹاپے کی طرف ہیں، اور ان کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ اس میں سے جو 5 سال سے کم ہے وہ 640 ملین ہے۔
640 ملین،
6.5-7 کروڑ کم بیش اس طرح، تو 5 سال سے
1 کروڑ سے زیادہ ہو گئے۔
یہ سمجھ لیں 5 سال سے کم کا ایج گروپ ہے۔ اب اس میں 2 کیٹیگری ہوتی ہے کہ ایک کیٹیگری کے کچھ بچے پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں موٹے، وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ والد والدہ یا دادی دادا یا نانی نانا، ان میں فیملی کی ہسٹری تو موجود نہیں ہے۔ اگر کسی میں، کیونکہ اس کو رول آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے معاشرے میں، کہ ایک بچے کی فیملی کے اندر جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے، کہ جینیٹیکلی طور پہ اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے، कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल उसका बचपन में ही डिस्टर्ब हो सकता है और लिपिड भी उसका बचपन में ही डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वालिद हैं या वालदा है, दादी दादा, अगर कोई मोटा था तो ये उसमें बच्चे में आ सकता है, ये भी एक तादाद है। अब ये बच्चा ना खाए तब भी ये मोटा ही होता है, और ये जब बड़ा हो रहा होता है तो माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है। यकीनन इस बच्चे को मोटा बोला जाता है और बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है,
तो यकीनन गलत ही है।
एक इसमें जो लिंक जो लिखा हुआ है कि इसका मोटापा डायरेक्ट लिंक करता है टू एंग्जाइटी के डिसऑर्डर से,
यानी बच्चे को एंग्जाइटी हो जाती है
लाइफ टाइम,
यानी वो हमेशा वो परेशान और
घबराहट परेशान, लोगों से भागना, बिहेवियर में चेंजेस, साइकिल,
लोगों से मिलेगा जुलेगा नहीं, लोग उसको चार बातें सुनाएंगे।
ये तो वो कैटेगरी हो गई जिसमें फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, एक उसको तो हम रूल आउट कर देते हैं। इसमें वालदेन को तवज्जो देनी होगी, डॉक्टर से चेकअप करा लें फौरी तौर पर, ताकि ये इसकी जल्दी तशखीस हो जाए और इसकी मैनेज हो जाए केस।
यानी ये उस वक्त पता चल सकता है कि जब बच्चे की विलादत हुई है, पैदाइश हुई है, बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका जब वेट किया जाता है, अगर वेट प्रैक्टिस से अलावा,
अभी जैसे जिसके वालदा है, अगर वो पैदाइश से पहले अगर उसको डायबिटिक हो गए, जेस्टेशनल डायबिटीज कहला जाती है, तो इसकी जो औलाद अगर पैदा हुई तो मुमकिन है सूरतों में इसका
डायबिटिक, ज़ियाबितीस और शुगर, ये तीनों एक ही का नाम है या अलग अलग है?
डायबिटिक, ज़ियाबितीस और शुगर, ये तीनों एक ही है। सही वर्ड जो है डायबिटिक ही है इंग्लिश में, वो ज़ियाबितीस उर्दू में बोल देते हैं, शुगर वो इसके अंदर खून में आ रही होती है तो इसलिए वो शुगर वर्ड बोल दिया जाता है।
मतलब ये है तीनों एक ही,
तीनों एक ही है।
ओके,
तो फीमेल वालदा को अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है, अगर हो गई तो बच्चा भी उसका, बच्चे का चांस होता है कि ओवर वेट बच्चा इसका पैदा हो।
ठीक,
एक
ये तो माँ को चाहिए कि अपने आप को शुगर की बीमारी से बचा कर रखे।
वालदा को तो अब ड्यूरिंग पूरे 9 महीने हर तरह की डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना जरूरी होता है, मॉनिटर करना होता है, नहीं मॉनिटर होता तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बच्चे में भी आ जाती है। एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी वो है जो सेल्फ इंड्यूस्ड है। WHO ने 2018 से लेके 2030 तक ये स्लोगन दिया है कि मोर एक्टिव पीपल फॉर मोर हेल्दियर वर्ल्ड, जितने एक्टिव लोग होंगे उतनी हेल्दी सोसाइटी होगी,
सेहतमंद माशरा बनेगा।
ये 2018 से 2030 तक का ये WHO का स्लोगन है ऑन बिहाफ ऑफ दिस।
दोबारा कह दें,
मोर एक्टिव पीपल फॉर मोर हेल्दियर पीपल,
जितने एक्टिव होंगे, फाल होंगे, मसरूफ रहते होंगे वो होंगे, इतना ही माशरा सेहतमंद रहेगा
होगा। ये 2018 से 2030 तक का WHO
एक मैसेज है,
स्लोगन है जो इन्होंने गवर्नमेंट वगैरह को क्या है इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों में एक्टिविटी बढ़े।
ओके,
तो अब ये जो कैटेगरी अब जिस पर अब डिस्कशन हम करेंगे, जिस बच्चे की गिजा पैदाइश के फौरन बाद जो है कि बच्चा जो दूध ले रहा होता है, अगर वालदा का नहीं ले पा रहा तो जो उसका टॉप फीड शुरू किया जाता है, तो जैसे वो फॉर्मुलेटेड मिल्क जो होता है, ये अमूमन ऐसा होता है कि किसी का ने शुरू किया घर में तो वही मिल्क या फॉर्मुलेटेड मिल्क बच्चे को भी शुरू कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैदाइश के फौरन बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद वो उस बच्चे को कौन सी फीड लेनी है, उसका वजन कितना आ रहा है, उसकी फीड की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ से लेके चलना चाहिए, और फिर 6 महीने के बाद बच्चे में खाने पीने की सलाहियत डेवलप करनी होती है। अब खाना पीना भी जो इनिशियल सजेस्ट किया जाता है वो जो होता है कि खिचड़ी है, केला है, नरम गिजा घर की बनी।
मैक्सिमम डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि हम बाहर की चीजों से बच्चे को बचा कर रखें,
ऐसा ये बाहर,
अगरचे बड़ों के लिए भी ये बारी बातें कही जा सकती है, लेकिन चूंकि हम पर्टिकुलर एक बच्चों पर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चों को इन तरह की बाहर की चीजों से हम बचा कर घर के अंदर ही जो कुदरती गिजाएं हैं, जो जिसको आपने खिचड़ी कह रहे हैं, इसके अलावा और नरम गिजाएं कह रहे हैं, वही अरेंजमेंट करके खिलाना चाहिए,
यही खिलाना चाहिए। और दूसरा ऐसे अभी चूंकि अब जो जनरेशन है ना, अब ये जो ग्रो करेगी या आएगी या होगी, तो इनके लिए अब जो प्रोसेस फूड मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल,
ये बना बनाया खाना,
बना बनाया इनका अवेलेबल है, तो इजीली कुक्ड हो जाता है, इजीली
घर में इतनी परेशानी नहीं होती, बाहर से लिया डब्बी खोली और डब्बा खोला और दे दिया।
तो अब इस पे तवज्जो दिलानी थी, ये लोग, ये अगर इनमें प्रॉब्लम, अगर ओबेसिटी और वजन का बढ़ना टोटल अलग चीज है, वजन बढ़ना इज डिफरेंट, ओबेसिटी होना वो टोटली डिफरेंट है।
ओबेसिटी मोटापा?
हाँ, मोटापा जो है वो टोटल डिफरेंट है, वजन का बढ़ जाना अलग है। तो इसमें भी बहुत वैरायटी है, थोड़ा इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन लुबे लुबाब समझाने की नीयत यह है कि शुरू से ही अगर डाइट
का हर वेट वाले का पेट हो ये जरूरी नहीं है,
नहीं है,
मगर हर पेट वाले का वेट जरूर होता है
जी। किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहा था तो उसमें 23 साल के लड़के की डेथ सर्टिफिकेट भी बना हुआ रखा हुआ था, तो उसकी मैंने डिटेल चेक की तो उसको बचपन से ही शुगर भी थी और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसका इंतकाल हुआ है 23 साल। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डाइट की वजह से हैं सारी है। अब ये ओवर ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बाहर के जूस, प्रोसेस्ड फूड और इजीली अवेलेबल जो मार्केट के अंदर जो बच्चों के बने बनाए फूड आजकल अवेलेबल होते हैं, इसका इस्तेमाल हो रहा होता है तो बच्चे हेल्दी बाहर तो नज़र आ रहे होते हैं बट वो उतने हेल्दी होते नहीं है।
अच्छा, बच्चों के ताल्लुक से जो भी बात हो रही है इसमें अब फैमिलीज को, वालिदा को, घर वालों को हम यही मशवरा देंगे कि मेहरबानी कर अपने घर में ऐसे इस तरह की चीज़ें ना ही हो तो बेहतर है। यानी हम क्या करते हैं कि अपने किसी एक बच्ची या बच्चे को हम कहते हैं बेटा वज़न कम करना है, डाइट करें, ये करें, वो करें, उसका वज़न बढ़ रहा है, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो जिस दस्तरखान पर बैठकर बच्चा हमारे साथ खाना खा रहा है वहाँ पर ये तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं, सारे घर वाले मिलकर वही खा रहे हैं, उसको कह रहे आपने नहीं खाना, तो ये उसके लिए बड़ी आजमाइश है, बड़ी आजमाइश है। तो ये तमाम तर चीज़ों को गौर करना चाहिए कि अगर वैसे ना हो दस्तरखान पर ऐसी चीज़ें कि जिससे हमारे सेहत को नुकसान पहुँचता है, यही सबसे ज़्यादा बेहतर है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों को अपनी इन तमाम तर चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ये अजीब व गरीब किस्म के चिप्स, मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि चिप्स की कॉस्ट में आता कैसा है, लेकिन आता है। अच्छा, बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म के फ्रेंच फ्राइज लाकर ये खाते हैं तो देखते ही जैसे कि अपने को जो है ना वॉमिटिंग जैसा हो जाए, लेकिन बच्चे खा रहे होते मज़े ले लेकर। तो ये क्या घर वालों को नहीं समझ में आता कि यार ये सब क्या हो रहा है, जो मतलब कि ना सफाई ना सुथराई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फिर बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम, और फिर बच्चों के ये प्रॉब्लम आगे तक फिर इनके साथ चलते हैं जो हमारी रिपोर्ट का एक वो नतीजा था। तो मेहरबानी करके अपनी इन तमाम तर जो घर की आदतें हैं बच्चों के साथ जो हमने की हैं कि बच्चा शुरू से ही इन चीज़ों का आदि बन जाता है, कहते बच्चा रहता नहीं है, बच्चा रोता है, तो उसको अल्टरनेट दें, उसकी आदत निकल जाएगी। अगर आप उसको रोता हुआ दे देंगे ये चीज़ें जिसके लिए रो रहा है, तो फिर ये जो आगे जाकर रोएगा ना, और फिर इसकी वजह से जो आप और हम रोएंगे उसका मामला कुछ और ही है। तो बेहतर यही है कि अभी उसको समझ नहीं आ रही, अभी आपको समझ आ रही है, कल बड़ा होकर ये कह देगा कि भाई मुझे नहीं समझ आ, आपको तो समझ आती थी, मुझे चीज़ें देने की क्या ज़रूरत थी, अभी से मान जाए। एक और डॉक्टर साहब आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा, उधर रिपोर्ट दिखाइए।
इंसदादे तंबाकू नोशी का आलमी दिन, सिगरेट पीने वालों की तादाद में तश्वीशनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू के इस्तेमाल के रोकथाम का आलमी दिन मनाया गया। आलमी इदारा सेहत की जानिब से हर साल 31 मई को तंबाकू नोशी से इंसानी सेहत को होने वाले नुकसान से मुतल्लिक आगाही फराम की जाती है। WHO के मुताबिक दुनिया में 29% मर्द और 9% औरतें तंबाकू नोशी करते हैं। माहरीन के मुताबिक एक फर्द जब सिगरेट पीता है तो न सिर्फ वो बल्कि इसके अतराफ में रहने वाले अफराद, खासतौर पर बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। माहरीन का कहना है कि तंबाकू नोशी करने वाले के फेफड़े मुतासर होने के बाइस को कोरोना लगने के इम्कान 50% ज्यादा होते हैं। माहरीन ने हुकूमत से अपील की है कि मुल्क में 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट बेचने पर पाबंदी को यकीनी बनाएं और मुल्क के मुस्तकबिल को सेहतमंद और महफूज बनाएं। दुनिया में योमिया 18 अरब सिगरेट फरोख्त होते हैं, जबकि पाकिस्तान में 1,60,70,00,000 सिगरेट फरोख्त होते हैं, जबकि दुनिया भर में मुंह और गले के कैंसर के केसेस में भी बहुत इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि सिगरेट नोशी के बाइस दुनिया भर में सालाना 80,00,000 अमवात होती हैं।
दुनिया में सालाना 80,00,000 अमवात हो रही हैं, सालाना, ईयरली 80,00,000 सालाना, एक बार की नहीं। कोरोना सिगरेट की अमवात, कोरोना से होने वाली अमवात, सिगरेट से होने वाली अमवात, तजिया करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी अपनी एक जो मालूमात के तहत अर्ज कर रहा हूँ, चाहे ये दुनिया का वाहिद यानी सिंगल प्रोडक्ट है जिस पर प्रोडक्ट करने वाले यानी बनाने वाले ने ये लिखा हुआ है
हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको मौत हो सकती है, यानी इसके साइड इफेक्ट इस प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। इतना बड़ा मुंह बना हुआ था, एक कैंसर हो जाएगा, ये सिगरेट पिएगा तो ये हो जाएगा, इतने बड़े बड़े मेरे वो एयरपोर्ट पर कहीं आते जाते नजर पड़ी थी कि वो डब्बों पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है स्मोकिंग का कि ये इससे मौत हो जाती है या मौत हो सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन आप सोचिए कि दुनिया में पर डे 18 अरब सिगरेट फरोख्त होते हैं, 18 अरब, 7.5 अरब की आबादी है दुनिया में, कमो बेश मोरले 7.5 अरब की आबादी, तो बच्चे और बच्चों को भी निकाल दें तो बहुत एक अच्छा खासा फिगर निकल जाएगा। हर औरत भी नहीं पीती होगी, हालांकि औरतें और फीमेल अब सिगरेट पी रही हैं, जैसे शायद कह सकते मर्दों से पीछे ना हो, ये पी रही हैं ठीक ठाक। लेकिन आप सोचिए कि 18 अरब रोजाना की सिगरेटें बिकती हैं और पाकिस्तान में 1,60,70,00,000 सिगरेट फरोख्त होते हैं। ये तो वो फिगर होगा जो इनके पर रिकॉर्ड पर आया हुआ होगा, 1 अरब। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ बताई जाती है, उसमें से चले बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी निकाल दें तो आप सोचिए कि 20 करोड़ या 15 करोड़ लोगों में 1,60,70,00,000 सिगरेटें बिक रही हैं। और इसके अलावा जब दुनिया भर में मुंह और गले के कैंसर के केसेस में भी बहुत इजाफा हो रहा है, वाज़ह है कि सिगरेट नोशी के बाद दुनिया में सालाना 80 लाख अमवात होती हैं। ये पूरा जो फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने बयान किया, जो हमारे को जो मिला वो मिला, वो हमने आप तक पहुंचाया, सच झूठ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये बिकना बंद नहीं होती, इसकी सेल बंद नहीं होती। मेरी एक अपनी पर्सनल मशवरा है जो भी अथॉरिटीज हैं, अव्वल तो ये कि इस किसी सूरत कौम को लोगों को इससे रोका जाए, क्योंकि इसके नुकसान ही नुकसान है। मजीद इंशाल्लाह डॉक्टर सलमान से भी इसका कुछ फीडबैक लेंगे। नुकसान ही नुकसान है, फेफड़ों को नुकसान, सीने को नुकसान, पैसों को नुकसान। अखलाकी तौर पर आज तक ये सिगरेट दुरुस्त नहीं मानी गई है कोई भी किसी मुअज्जज़ दीनी ने, या आज भी हमारी सोसाइटी में, यानी हम अगर अपने पाकिस्तान के और इसके अतराफ की अगर हम बात करें तो आज भी औलाद अपने वालिदैन के आगे सिगरेट पीने को पसंद नहीं करती, वालिदैन से चुप कर पीती है। इमाम साहब सामने आएंगे तो रोक लेंगे, पीर साहब सामने आएंगे तो छुपा देंगे। अच्छा ये बताता चलो कि अगर कोई सिगरेट छुपा देता है, जैसे आप सामने से आए और किसी ने सिगरेट छुपा ली, तो मेहरबानी करके इसको ये बोलना नहीं, क्या छुपा रहे हो, पता है सिगरेट पी रहे हो। तो ये जो आपने अब कह दिया ना, तो ये छुपाने का सिलसिला भी बंद हो जाए, इनको पता तो मैं सिगरेट पीता हूँ। अगर ये भी एक कुछ भी है, कोई रिस्पेक्ट का एक तो अंदाज तो है यार, ये आपकी इज्जत कर रहा है और आपके सामने सिगरेट छुपा रहा है। मगर यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों आप सिगरेट छुपा रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ये सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है। मस्जिद में कौन सिगरेट पीता है, बल्कि अब तो एयरपोर्ट पे जाओ ना, ये भी कमाल है, तमाशा है। ये सिगरेट वालों के लिए बड़ी इबरत की बात बयान कर रहा हूँ। अभी आप सिगरेट ये जो आप एयरपोर्ट में जाएं तो बड़े बड़े एयरपोर्ट पर इस वक्त स्मोकिंग के एरियाज अलग बनाए हुए हैं, सिगरेट पीनी है अंदर चले जाओ, इधर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से लोगों की सेहत बर्बाद होगी। अलग इनके काउंट, इनके केबिने अलग बनी हुई है, केबिनों में जाकर सिगरेट पियो, बाहर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, जहाज में सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, बहुत सारी जगह पर सिगरेट पीने की इजाजत फिर भी नहीं है, और मुसलमान मस्जिद में कहाँ सिगरेट पीता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब भी मुसलमान को इतनी है कि मैंने मस्जिद के अंदर ही सिगरेट पीते देखा नहीं है, जो मस्जिद जिसको कहते हैं, मस्जिद के अंदर लोग सिगरेट पीते हो। तो ये बुरी आदत है, बद अखलाकी है, इसको छोड़ देना चाहिए। पैसे बर्बाद होते हैं, सेहत बर्बाद होती है, बहुत कुछ इसके नुकसान आते हैं। फिर डॉक्टर साहब, जो लोग घर में सिगरेट पीते हैं, इसके क्या क्या असरात मुरतब होते हैं?
ऐसे इसको बोलते हैं, घर में पीते हैं, बाहर पीते हैं या किसी एनवायरमेंट में पीते हैं, तो एक तो माहौलियाती आलूदगी में ये इजाफा करते हैं। एक सेकंड जो है, इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। अगर कोई भी बंदा घर के अंदर पी रहा है, उसके कमरे में या एरिया के अंदर स्मोक मौजूद है,
धुआं मौजूद है
या पीने के बाद रह गया, धुआं फौरन ख़त्म नहीं होता, इसके बच्चे का एक्सपोजर होगा, इसके घर में जितने भी लोग होंगे, सिगरेट के धुएं के अंदर जितने कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल से मतलब ये है कि वो केमिकल जो कैंसर किसी भी किस्म का पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट है केमिकल्स की, तादाद है कि ये सारे केमिकल का एक्सपोजर होने का रिस्क है। तो पैसिव स्मोकिंग, क्लोज इन्वायरमेंट में पी लेना, बच्चों को एक्सपोजर होगा हो जाना, फिर इसके बाद घर के बड़ों का हो जाना, तो ये ना पीते हुए भी सिगरेट के एक्सपोजर उनका हो रहा होता है। और इनके अंदर जो है फेफड़ों के अमराज इनके अंदर भी पाए जा रहे होते हैं। और जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट पी रहे होते हैं, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं वो दिल के अमराज ज़्यादा एग्रेवेट, किसी जो नॉन स्मोकर होता है दिल के अमराज को थोड़ा डिले होते हैं, स्मोकर के अंदर और जल्दी हो जाते हैं। फिर प्लस लाइफ लॉन्ग इनके जो फेफड़े होते हैं, अगर 55-60 साल की एज में इसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, अक्सर पेशेंट ऐसे हैं कि इनको ड्यूरिंग द सर्जरी या बिफोर द सर्जरी चेकअप वगैरह होता है तो पता लगता है कि इनके लंग्स का एक साइड कोलैप्स्ड है। एक कैंसर तो सबके नॉलेज में है, पता आएगा, लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेन नहीं है जो स्मोकिंग की वजह से बचता है। लेकिन एक कैंसर ऐसा है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर, लुबलुबे का कैंसर। ये वो कैंसर है जो सिर्फ ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से होता है। और इसका हॉलमार्क सिम्टम ये है कि इसकी अलामतें आपको पता नहीं लग रही होती हैं। जब ये बिल्कुल आखिरी के स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके पता लगता है कि आप इस चीज़ के कैंसर में मुब्तला हैं। अब यहाँ से रिवर्सल बहुत मुश्किल है।
क्या ये सारी तफसीलात मालूम होने के बाद आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी माशी तरक्की के लिए? जितने रुपए की आप सिगरेट पी जाते हैं, अगर इतने रुपए आप राय खुदा में सदका कर दें तो आप बताइए कि ये आपके लिए दुनिया और आखिरत में किस कदर काम आने वाला मामला होगा। मैं फैमिली से भी अर्ज करता हूँ, आप भी थोड़ा सा हाथ जोड़ लें, प्लीज सिगरेट छोड़ दो। ये सिगरेट के आदि होते हैं जिन्हें बाज़ औक़ात, मैं ये एक अंदाज़ा से अर्ज कर रहा हूँ, जिन्हें फिर आगे चर्स और दीगर नशे की आदत पड़ जाती है। जब जिससे सिगरेट ही नहीं पी होती ना, आपको नॉर्मली वो इस लत में पड़े हुए मिलेंगे नहीं। इसकी इस मतलब के नशे के जो आदि बनते हैं, इनकी पहली सीढ़ी सिगरेट है। ये सिगरेट पीते हैं फिर उस नशे की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये हाथ में आ जाते हैं। तो क्या आप नहीं छोड़ेंगे? अभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग गई, कोई ऐसी मोहताजी हो गई, लाखों करोड़ों रुपये फिर आपकी इलाज पर खर्च होंगे, बेरोजगारी अलग हो जाएगी, घर में परेशानी अलग, अल्लाह ना करे आपका ये धुआं आपके बच्चों के फेफड़ों सीनों को बर्बाद कर दे, छोटी सी बच्ची छोटे से बच्चे पर भी आपको रहम ना आए। ये तो आप तो बहुत मोहब्बत करते अपने बच्चों से, इतना मोहब्बत करते अपने बच्चों से। आपका एक छोटा सा बच्चा जो घर में झूल रहा है कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर, और आप बेडरूम में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, और ये धुआं सिगरेट के छोटे से बच्चे के नाक के जरिए जो सीने में और फेफड़ों में दाखिल हो रहा है, आपको पता है कि आप अपने हाथ तो अपने बच्चे को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना चाहते हुए। इस तरह बाहर ऑफिस के अंदर लोगों में बैठते हुए क्यों करते हैं ऐसा? ना करें, प्लीज छोड़ दें। मैंने 20-20 साल पुराने स्मोकर सिगरेट पीने वालों को वन शॉट स्मोकिंग छोड़ते देखा है, मैं आई विटनेस हूं। क्योंकि तलब तो होती होगी, उन्होंने भी छोड़ा, मुझे पर्सनली तो पता ही नहीं है कि सिगरेट पीते कैसे हैं, ना सिगरेट का को टुबे को एक्सपीरियंस है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ना कभी सिगरेट पी है, ना कभी अपने को आती भी नहीं है, ना कभी तंबाकू का तजर्बा है हमको। मगर ऐसा लगता है कि ये सब बड़ी फीलिंग्स आती होंगी, 20-20, 25-25 साल तक जो सिगरेट पीते होंगे उनको छोड़ते वक्त कितनी प्रॉब्लम होती होगी, मगर वन शॉट छोड़ दिया, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, हिम्मत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी कॉल दें।
सबक आमोज खबर सिलसिले में मेरा ये एक सवाल है, 30 से 35 साल की उम्र में कितना वेट वजन होना चाहिए, बराए करम इस बारे में बता दें।
जी डॉक्टर साहब, 30 से 35 साल की उम्र में वजन जो होना चाहिए इनकी हाइट के हिसाब से, इनकी हाइट जितनी होगी, जैसे 5 फीट हाइट है तो कमो बेश 60 के अंदर अंदर इनका वजन होना चाहिए 5 फीट पे, और 5 फीट से इंच में ऊपर ज्यादा है तो उसके हिसाब से
पर इंच पर केजी
पर इंच पर एक केजी
ये एवरेज है। आप अपना हाइट دیکھ لیں, اپنی قد دیکھ لیں, آپ کا قد کتنے فٹ کا ہے, انچز پر دیکھ لیں کہ جتنے انچ کا آپ کا قد ہے پر انچ ایک کے جی 1 کلو گرام, اس کے حساب سے انشاءاللہ آپ اس کا حساب بنا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اوکاڑا میں بڑا ایک عجیب واقعہ, ڈاکٹر صاحب پہلے اوکاڑا کی طرف چلتے ہیں. اوکاڑا میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا, کیا ہوا آئیے خبر دیکھتے.
اوکاڑا میں طوفانی بارش, دیواریں, چھتیں اور درخت گرنے سے 14 افراد جاں بحق. اوکاڑا شہر اور گرد و نواح میں شدید طوفان اور تیز بارش سے مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. تیز رفتار آندھی سے ضلع بھر میں درجنوں درخت, پول, سائن بورڈز اکھڑ گئے اور گھروں کی دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات پیش آئے. ریسکیو 112 کے مطابق گوگیرا میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو انچارج کے مطابق ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں, جبکہ دوسرے واقعے میں درخت اور دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق, 3 شدید زخمی ہو گئے. اسی طرح کچہری بازار میں درخت گر گیا جس کے نتیجے میں نوجوان جاں بحق ہو گیا, جبکہ 2 راہگیر زخمی ہو گئے. حویلی لکھا میں دیوار گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا.
مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. موت 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 موت, کرونا موت, کینسر موت, ٹی بی موت, حادثے موت, طوفان موت, بارشیں موت, چھتے گر گئی موت, درد گر گئے موت, اتنے موت کے مرنے کے واقعات اور خبریں ہم سنتے ہیں. لیکن ہائے دل, ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا, مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا. شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت, اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں. اتنے موت ہسپتالوں میں موت کے وقت, قبرستان میں تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی شہر خاموشاں, وہاں قبرستان میں عبرت, ہسپتالوں میں عبرت, ہر جگہ عبرت ہی, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. سبق آموز خبروں میں, اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اس لمحے بھی آ سکتی ہے, آپ کو بھی آ سکتی ہے, مجھ کو بھی آ سکتی ہے. ہماری سانسوں کی گنتی کب پوری ہو جائے اور ہمارا کس حال میں مرنا لکھا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کچھ حادثات و واقعات ہو رہے ہیں, جو طوفان, بارش, ہوائیں, درخت کا گرنا, زلزلے وغیرہ, اس میں جتنے مسلمان انتقال کر گئے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت کر دے اور سارے زخمیوں کو اللہ صحت عطا فرما, تمام لواحقین کو اللہ صبر عطا فرما. اللہ سب کو صبر دے اور ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا معاملہ یہ سامنے آتا ہے, آئی تھنک اس کو شاید کہیں گے کہ صحت یا ہیلتھ کے تعلق سے, آئی تھنک اوور کانشیس کہیں گے, بہت زیادہ آدمی صحت کے تعلق سے سوچ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی بسا اوقات انسان کو بیماری کی طرف لے جاتا ہے. آئیے ایک رپورٹ سنتے ہیں.
صحت سے متعلق حد سے زیادہ فکر مند ہونا مسائل اور ذہنی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے. صحت کے متعلق فکر مند ہونا اچھی بات ہے, انسان کو اپنے اندر آنے والی علامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, لیکن ایک حد سے زیادہ فکر اور اندیشے آپ کو مزید مسائل اور بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں صحت سے متعلق آنے والا ہر خیال اور سوچ ضروری نہیں کہ سچ اور حقیقت ہو. لوگ معمولی سی علامات کو بھی بڑی بیماری سے جوڑ کر فکر مند ہو جاتے ہیں, جس سے ان کے ذہن پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ ڈپریشن, ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں. بعض افراد کسی اور کی بیماری یا علامات کے متعلق جان کر اپنے اندر ان علامات کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایسے افراد بعض اوقات بیجا ادویات اور سپلیمنٹ کا از خود استعمال شروع کر دیتے ہیں, جس کے سائیڈ ایفیکٹس ان کو ذہنی مسائل یا کسی مرض میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں کیسے پتہ لگایا جائے, بیماری اور گمان میں کیسے فرق کیا جائے, تو اس کے لیے کسی بھی علامت کی خود سے تشخیص کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے اور درست چیک اپ کروایا جائے. مختلف بیماریوں کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں, جس کے سبب غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ معمولی فرق کے ساتھ مرض کچھ कुछ का कुछ होता है। अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे की उम्मीद रखें।
अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे की उम्मीद रखें। हमारे साथ डॉक्टर जीरक भी हैं, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम इनसे कुछ राय लेंगे जो इस वक्त आपने रिपोर्ट देखी है, और डॉक्टर सलमान भी हमारे साथ ही हैं। बाज़ों हम मैंने जिन डॉक्टरों से इस मामले में जो मालूमात हासिल की है वो ये कहते हैं कि बार बार ब्लड प्रेशर चेक ना किया जाए। एक नॉर बहुत ही रेयर सिचुएशन में जब डॉक्टर की तरफ से आपको रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, या आप इतनी इतनी देर के बाद ब्लड प्रेशर चेक करें, तो वो एक ड्यू टू डिजीज प्रॉब्लम की वजह से है। अदरवाइज बार बार ये ना किया जाए, बार बार ये ना किया जाए, यानी कि मेंटली तौर पर ऐसा ना हो कि आदमी फिर इसका आदि हो जाता है। डॉक्टर जीरक, आप बताइए क्या ये जो प्रॉब्लम अभी रिपोर्ट बताई गई है इसका भी कोई नफ्सियात से ताल्लुक है? अब तो ये ना कि अब जो भी कुछ हो जाए ना, ज्यादा बुखार भी आता है तो लोग नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप लोगों ने भी काम भी ठीक ठाक, आप नफ्सियाती डॉक्टर वाले हो ना, आप लोगों ने भी लोगों की नफ्सियात के साथ ठीक ठाक काम तो किया हुआ है।
ये जो रिपोर्ट में अलामत बयान की गई है सेहत के हवाले से, गैर जरूरी तौर पर परेशान होना और वो बीमारी जो आपके अंदर नहीं है उसके हवाले से सोचना, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग, यानी कि चैलेंजिंग मरीज होते हैं ऐसे डॉक्टरों के लिए, क्योंकि डॉक्टरों को समझ भी नहीं आ रही होती, टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, फिर भी मरीज कहता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है। और पहले आप नफ्सियात की तरफ जा भी नहीं सकते जब तक कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके आप रूल आउट ना करें कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है। और फिर जब टेस्ट वगैरह या इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल होती है तो फिर ये वाकई एक पर्टिकुलर जो है वो नफ्सियाती मर्ज है, हाइपोकोंड्राइसिस इसको कहते हैं, कि खाम खा जो है वो आप सोचते हैं। और इस हवाले से ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे मरीजों को हैंडल करना माहिरीन नफ्सियात के लिए भी। और इसका जैसे रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था कि हर वक्त वरी करने के हवाले से हमारी बॉडी, जो भी हमारी थॉट्स होती हैं, मनफी थॉट्स हो गई या परेशानी हो गई या एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर हॉर्मोन्स और केमिकल रिलीज करती है जिसको हम स्ट्रेस हॉर्मोन्स कहते हैं, एड्रेनालिन वगैरह, नोरएड्रेनालिन। अब उनका जिस्म पर असर क्या होता है कि आपके पट्टे जो है वो खिंचे रहते हैं, आपका हार्ट रेट जो है वो तेज होता है, इसी तरह आपकी खून की नालियां जो है वो सुकड़ती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और फिर पट्टे खिंचे रहने की वजह से सर का दर्द भी होता है, बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है, नींद भी सही तरह से नहीं आती, और इसी तरह जो है वो इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। तो इसका जाहिर है मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो किसी को इस तरह की बीमारी ना लगाए, उससे महफूज रहे, लेकिन बहुत कुछ इंसान की अपनी सोच पर भी होता है। और इसका अगर नफ्सियाती तजिया किया जाए तो कई जो है वो रूट कॉज या रूट प्रॉब्लम्स ये बचपन से शुरू होती हैं। बाज़ दफ़ा आपकी जो है वो कुछ नीड्स पूरी नहीं होती, या घर का माहौल अच्छा नहीं होता, या बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इस तरह की बीमारियां फैमिली में रन कर रही होती हैं, या वालिद साहब को इस तरह की कोई बीमारी होती है, या वालिदा साहिबा को होती है, वो फिर आगे बच्चे जो है वो उसी यानी कि जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है, और बाज़ दफ़ा देख कर भी जो है वो उसका असर पड़ता है। तो ये कुछ मदनी भूल थे इस हवाले से।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह रिश्तों में शकूक और शुबहात रिश्तों को तबाह कर देते हैं, इस तरह अपने जिस्म के ताल्लुक से भी शकूक और शुबहात कि मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया, मैं यूं लूंगा तो यूं हो जाएगा, यूं यूं होगा तो यूं, देखिए एक तो रियलिटी होती है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ अपने ही एक सब वो सोच रहा होता है और बस ख्यालात आ रहे होते हैं, ख्यालात आ रहे होते हैं, फिर ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, तो ऐसा तो नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों से जो अपने जिस्म में जो बीमारियों के ताल्लुक से या जिस्मानियत के ताल्लुक से शकूक व शुबहात में पड़े रहते हैं, वो जैसे वो रिश्ते भी खराब करते हैं या अपने जिस्म के भी हालात खराब कर देते होंगे।
जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज की कि इस तरह करने की वजह से जो आपके बॉडी में केमिकल इम्बेलेंस आएगा उसकी वजह से आपका हार्ट रेट तेज होगा, आपकी ब्लड वेसल सुकड़ेंगी, ब्लड प्रेशर होगा, تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ کیونکہ پھر یہ لانگ ٹرم چلتی رہتی ہیں نا, ایک تھوڑے محدود عرصے کے لیے ہو تو بندہ ریکور ہو جاتا ہے, لیکن اس سٹیٹ میں جب آپ ایک لانگ ٹرم رہتے ہیں تو آپ کو باڈی پر بالکل اثر پڑتا ہے جسمانی طور پر بھی, اور ایسے لوگوں کو پھر ہارٹ اٹیک ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. بلڈ پریشر جو دیکھا جائے تو یہ کڈنی فیلئر کا, گردے فیل ہونے کا سب سے جو ہے وہ بڑا کوز ہے. ہائپر ٹینسو نیفروپتھی اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح ظاہر بلڈ پریشر ہائی ہونے سے جو ہے وہ پھر آپ کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں انجائنا, ہارٹ اٹیک, یہ اسی زمرے میں آتے ہیں. تو ملٹیپل پرابلم جسمانی طور پر آپ کو لانگ ٹرم ہو جائیں گی.
ایسے جیسے کچھ, جی ڈاکٹر سلمان, ایسے کرنی تھی, کچھ لوگوں کو تھوڑی اگر معلومات ہوتی ہے نا کہ یہ چیز کی تاثیر گرم ہے, تو میں نے گرم چیز کھا لی ہے تو اس گرم تاثیر کو ختم
کرنا شروع ہو جائے گی.
نہیں نہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈی تاثیر کی چیز کھاتا ہے, تو یہ کھاتے رہتے ہیں اور ہیبیچوئل. ڈاکٹر زیرک اس پہ مزید رہنمائی فرما دیں گے. فیمیل کے اندر باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر جو ہے وہ کتنا کامن ہے, کہ مطلب ہر وقت یہ اپنے لے کے جو تشویش میں رہتے ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہے, موٹاپا ہو گیا ہے, اس کو بیلنس میں رہنا ہے, تو ڈائٹ اور
موٹاپے سے تو مرد ہو یا عورت ہو بچنا چاہیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وزن کے تعلق سے بندے کو احتیاطی تدابیر ہی رکھنی چاہیے, لیکن اپنے آپ کا اپنا وزن کم کرنے کے چکر میں کمزوریاں پال لینا, پھر بون ڈیزیز کی طرف چلے جانا, بیک پین کی طرف چلے جانا, اس طرح مطلب بہت سارے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, دماغ کمزور ہو جاتا ہے, سوچنے کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں, پھر احساس کمتری الگ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر کبھی چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوگی کہ میرا چہرہ صحیح نہیں ہے تو میری آنکھ صحیح نہیں ہے, میرا چشمہ صحیح نہیں ہے, میرا قد صحیح نہیں ہے تو میرا یوں صحیح نہیں ہے, تو میرا یہ صحیح نہیں ہے, میں یہ لے لوں, میں وہ لے لوں, 10 آدمی سے مشورہ کریں گی, اور اس میں پھر وہ اتنی مطلب کہ اس میں غیر ضروری, ایک ہوتی ہے کہ بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں, غیر ضروری چیزوں میں پڑھ کر اپنے جسم کا اپنی صحت کا جو ستیہ ناس کیا جاتا ہے, اور پھر جو ویکنیس یہ لڑکیاں یا آج کل کے ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں, میں نے بھی سنا تھا کہ پھر وہ کمزوریوں کا شکار ہو جاتی ہیں, پھر اسپیشلی آفٹر میرج, شادی کے بعد, اور پھر اس کے بعد جب پریگننسی ہو جائے, اس کے بعد اگر بچے ہوں تو اس کے بعد جو ان کے میڈیکل ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ شاید آج اس وقت ان لڑکیوں کا ان بچوں کا شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ صرف لگتا ہے صرف کسی فیشن یا کسی مطلب گلیمرائز کلچر کے نام پر اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ انہیں آگے جا کر تکلیف ہو جائے. موٹاپے سے بالکل بچنا ہے, اوبیسٹی سے بالکل بچنا ہے, اس طرح کی دیگر بیماریوں سے بالکل بچنا ہے, لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے چکر میں ذہنی مریض بھی تو نہیں نہ بن جانا, کچھ کہیں گے ڈاکٹر زیرک؟
جی, اس حوالے سے بالکل, جو آج کل کا دور چل رہا ہے, میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو, اس میں جو ایک نارمل امیج کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ بھئی مردوں کا یہ نارمل امیج ہے اور عورتوں کا یہ نارمل امیج ہے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نارمل بھی اب نارمل ہے, جو بالخصوص عورتوں کے حوالے سے امیج کریٹ کیا جاتا ہے وہ نارمل نہیں ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جیسے آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہائٹ کے حساب سے ویٹ ہونا چاہیے, وہ ہماری باڈی کے تمام سسٹمز کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اب جو عورتیں انڈر ویٹ ہوتی ہیں ان میں ہارمون امبیلنس آتا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ پریگننسی کے حوالے سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو بہرحال وہ جو میڈیا کے ذریعے یہ جو ایک امیج اب نارمل امیج کریٹ کیا جا رہا ہے, اس کا آج کل بہت پریشر ہے, اور لڑکیاں اس کا زیادہ پریشر لیتی ہیں اور اپنی باڈی کے حوالے سے اوور کانشیس ہو جاتی ہیں, پھر ڈائٹنگ, ایکسیسو ڈائٹنگ کی طرف چلی جاتی ہیں, اور ایکسیسو ڈائٹنگ کی وجہ سے جو ہے ان کے جسم میں سوڈیم اور پوٹاشیم ہو گیا, اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو منرلز ہوتے ہیں ان کی تعداد میں جو ہے وہ نارمل سے وہ اب نارمل ہو جاتے ہیں, اور اس کا کافی لانگ ٹرم ایفیکٹ بھی ہوتا ہے.
احتیاطی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جی کالز دیں.
نگرانی شورا کے جو یہ الگ الگ ٹاپک ہوتے ہیں سبق آموز سلسلے میں, اس سے کافی سیکھ حاصل ہوتی ہے. عرض یہ تھی حضور کہ ایک گھر میں کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور کوئی لڑکی ان کے یہاں آتی ہے شادی ہو کر, اب وہ روکے ٹوکے تو اس پر ماحول درست نہیں ہوتا گھر کا, تو اس پر کس طرح سمجھایا جائے گھر کے بڑوں کو जो कि बच्चों के सामने सिगरेट या बीड़ी वगैरह पीते हैं, बराए करम हमारी रहनुमाई फरमाए और हमारे बड़ों को भी समझाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।
आमीन भैया को। ए घर के बड़ो समझ जाओ ना, प्रोग्राम देखने के बाद इस तरह की चीजें होने के बाद हो सकता है घर में कईयों को परेशानी हो गई और यार आप छोड़ो, लेकिन देखे मारामारी करके ना छुड़वाए, क्योंकि अगर उसको टेंशन देंगे ना तो ये की दो पिएगा। ये सुना इनका ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये टेंशन में ज्यादा पीते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ये ज्यादा इसको ज्यादा पीने से ज्यादा टेंशन होना चाहिए, क्योंकि बीमारी बढ़ सकती है। तो अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए। बड़े छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह छोटे भी छोड़ेंगे। अब बड़े बोले कि मैं ना छोड़ूं, मैं पीऊं, मैं सब कुछ करूं और मैं अपने बच्चों को समझाऊं कि तुम ना करो, तो ठीक है, बच्चों को वाकई नहीं करना चाहिए। देखिए अगर किसी में भी, चाहे वो बड़े हो पहले बड़े हो, अगर वो आदत अच्छी नहीं है, गलत है, गैर शरीय है, गैर अखलाकी, उसको इख्तियार तो नहीं ना किया जाएगा। ये तो कोई दलील ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है, जना वो करता तो मैं क्यों नहीं करूँ। वो ये तो आप बोलोगे यार वो नमाज पढ़ता है, वो नेकी करता है, तो उस तरफ आप आ रही है। कभी जुमला नहीं तो यार वो तहज्जुद पढ़ता है, मैं क्यों ना पढ़ूँ, ये अच्छी बात है। वो नमाज के बाद जमात पढ़ता है, मैं क्यों ना पढ़ूँ, वो पहली सब में नमाज पढ़ता है, मैं क्यों ना पढ़ूँ, तो ये अच्छी बात है। इस तरह जाए इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो बड़ों को चाहिए कि वो अपनी आदतों को अच्छा रखें, तो इंशाल्लाह छोटे उन आदतों को इख्तियार करेंगे अल्लाह ने चाहा। हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार है उसके, आतिशफशां आग, पहाड़ों से जो आग निकलती है, वो पहाड़ों से जो आग निकलती है ना, उस आग के ताल्लुक से कि वो आग क्या है और उसके प्लस माइनस क्या है, इसमें मैं आपको अभी से बता दूं, ये भी एक समझे कि कुदरत का एक है, जैसे अल्लाह ताला की कुदरत का इसमें आप मतलब कि वो देखेंगे, नज़ारा देखेंगे कि किस तरह पहाड़ों में भी आग है और समुंदर में भी आग है। और इस आग के जैसे कि बहुत सारे दरिया बहते हैं, आग के दरिया बहते हैं। मैंने ये वीडियोस देखी थी, मेरे जहन में ख्याल आया था कि ये आग ऐसी है, जहन्नम की आग ऐसी होगी, अल्लाह की पनाह। इतने इतने किलोमीटर तक, इतने इतने किलोमीटर तक जिंदगी मुश्किल हो जाती है। 20-20 किलोमीटर की आपको शायद इसमें आपको आवाज़ आएगी, तो जहन्नम की आग की तपिश कैसी होगी, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है और काली है। दुनिया की आग जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। तो ये दुनिया की ये जो पहाड़ों से निकलने वाली जो आग है और ये आग का जो लावा है, ये क्या होता है, आतिशफशां के ताल्लुक से एक रिपोर्ट देखते हैं।
कांगो में आतिशफशां फटने से 2500 मकान तबाह, 20,000 लोग बेघर, 4,00,000 अफराद की नकल मकानी। 22 मई को होने वाले आतिशफशां के धमाके में तकरीबन 2500 मकान तबाह हो गए, जबकि कांगो के शहर गुमा और आसपास से 4,00,000 अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशफशां से मुतासरीन की बड़ी तादाद पीने के पानी और खाने की अशिया की किल्लत का शिकार है।
इंडोनेशिया में आतिशफशां फट पड़ा। आतिशफशां फटने के बाद राख आसमान में 2.8 किलोमीटर के दायरे तक फैल गई। करीबी आबादी को पहले ही खाली करा लिया गया था। जोरदार धमाके के बाद राख और पत्थर दूर दूर तक जा गिरे, जबकि पहाड़ी से लावे का इखराज शुरू हो गया। आतिशफशां क्या है? आतिशफशां से मुराद ऐसे पहाड़ हैं जिनमें मुख्तलिफ अकसाम की गैसेस और सतह पर गर्म मादा यानी लावा मौजूद होता है। एक आतिशफशां में 15 सतह होती हैं, जिनमें लावा सबसे निचली सतह पर होता है। आतिशफशां की 3 अकसाम होती हैं, जिंदा या मुतहरिक आतिशफशां, खामोश आतिशफशां जो काफी अरसे के बाद मुतहरिक होता है, और नंबर 3 मुर्दा आतिशफशां जो पहले किसी जमाने में मुतहर्रिक था। आतिशफशां के इर्द गिर्द का 20 किलोमीटर हिस्सा खतरनाक होता है, यानी आतिशफशां के फटने की सूरत में ये हिस्सा और इसकी आबादी इसकी तबाहकारी का शिकार हो सकती हैं। आतिशफशां फटने की सूरत में न सिर्फ लावा निकलता है बल्कि इसमें गैस और राख भी निकलती है। अक्सर आतिशफशां जमीन की प्लेटों के दरमियान वाक़े होते हैं। दुनिया में इस वक्त करीब 1900 आतिशफशां पहाड़ हैं जो किसी न किसी तरीके से मुतहर्रिक हैं। दुनिया की 35 करोड़ आबादी आतिशफशां पहाड़ों के इर्द गिर्द रहती है। आतिशफशां पहाड़ न सिर्फ जमीन पर मौजूद हैं, बल्कि ये समंदर के अंदर भी मौजूद हैं और बर्फ के पहाड़ों के दरमियान भी मौजूद हैं। दुनिया में सबसे बड़ा आतिशफशां पहाड़ मौना लाव है, जिसकी ऊंचाई 4,169 मीटर है, जो हवाई के इलाके में मौजूद है। आतिशफशां से कुछ फवायद भी हासिल होते हैं। आतिशफशां का लावा जिस जमीन पर से गुजरता है उस जमीन को इंतहाई जरखेज कर देता है। आतिशफशां का लावा जब समंदर में जाकर गिरता है तो समंदर के कुछ
कुछ हिस्से को भरकर नई जमीन उभर आती है, जिससे जमीन में इजाफा हो जाता है। आतिशफिशा की राख और लावे में बहुत से मादनियात भी निकलकर जमीन पर आ जाती हैं, जैसे कॉपर, सल्फर और सोने जैसी मादनियात शामिल हैं। कुछ लावे की बाकियात से हीरे भी मिले हैं। आतिशफिशा फिजा को ठंडा भी करता है। इसमें निकलने वाली राख में से सल्फर निकलता है, जो फिजा में मौजूद नमी से मिल जाता है और सालों तक फिजा का हिस्सा रहता है, जिससे उस इलाके का दर्जा हरारत कम हो जाता है। इसके अंदर से निकलने वाली भाप में जियोथर्मल एनर्जी होती है, जिससे बिजली बनाई जा सकती है। दुनिया में 20 ममालिक इस एनर्जी से बिजली बना रहे हैं। अमेरिका इससे सबसे ज्यादा 1.5 गीगावाट बिजली पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी 7 आतिशफिशा मौजूद हैं, इनमें से कोई भी मुतहरिक नहीं। दुनिया में आतिशफिशा फटने के जो बड़े हादसा रोनुमा हुए, इसमें से कुछ दर्जेल हैं। 1815 में इंडोनेशिया में आतिशफिशा फटने के नतीजे में 2.5 लाख से जायद अफराद लुकमाए अजल बन गए। 1883 में इंडोनेशिया में ही आतिशफिशा फटने के एक और वाकये में 36,000 अफराद मारे गए। 1902 में फ्रांसीसी जजीरे में आतिशफिशानी से 30,000 लोग हलाक हो गए। 1985 कोलंबिया में 23,000 और 1792 में जापान में 15,000 लोग हलाक हो गए।
हमारे पे एक्सपर्ट व्यूज हैं, उनकी तरफ जाने से पहले आपने सुना होगा कि अभी के समुंदर के अंदर ने पानी में भी आग। मैंने जब ये रिपोर्ट का ये हिस्सा सुना था तो मेरे जहन में सूरह यासीन शरीफ की एक आयत आई थी। मैं वो आयत आपको बयान करता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये सूरह यासीन की में है आयत नंबर 80 कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी जअला लकुम मिन शजरिल अख़दर नारा, जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख़्त से आग पैदा की। इसकी तफसीर सुनिए कि जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख़्त से आग पैदा की, यानी अरब के दो दरख्त होते हैं जो वहां के जंगलों में कसरत से पाए जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि जब इनकी सब्ज शाख ग्रीन ब्रांच ऑफ ट्री, शाख कहते हैं ब्रांच ऑफ ट्री को, जब इनकी सब्ज शाखें काट कर एक दूसरे पर रगड़ी जाएं तो इनसे आग निकलती है, हालांकि वो इतनी तर यानी इतनी गीली पानी वाली होती हैं कि इनसे पानी टपकता है। इसमें कुदरत की कैसी अजीब व गरीब निशानी है कि आग और पानी दोनों एक दूसरे की जिद, हर एक एक जगह एक लकड़ी में मौजूद, ना पानी आग को बुझाए ना आग लकड़ी को जलाए। जिस कादिर मुतलक की ये हिकमत है, वो अगर एक बदन पर मौत के बाद जिंदगी वारिद करे तो इसकी कुदरत से क्या अजीब, और इसको नामुमकिन कहना आसार कुदरत देख कर जाहिलाना और सरकशी वाला इनकार करना है। ये सर तफसीर सरात जिनान से मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो ये बस अल्लाह ताला की कुदरत है, और ये देखिए कि किस तरह, मतलब कि जिस तरह समुंदर बहता है इस तरह आग भी बहती है, क्या क्या मंजर है ये। और इसकी इससे भी मिलने वाली मादनियात, इससे भी मिलने वाले ऐसी चीज़ें जो इंसान को फ़ायदा देते हैं और जो नुकसान के पहलू वो भी हैं। हमारे पास एक्सपर्ट व्यूज़ हैं, आइए देखते हैं।
मेरा नाम डॉक्टर गुररेज हामिद है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा रहा हूँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मेरा डिपार्टमेंट जो है जियोलॉजी यानी कि शोबा अर्जियात। आतिशफिशा को हम लोग वॉल्केनोज भी कहते हैं। वो कौन सी प्लेट है जब वो टकराएंगी तो वॉल्केनोज बनती है, एक ओशियनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल। जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ये क्या होती है कि ये उसके नीचे टकरा के चली जाती है, उसको हम लोग सबडक्शन कहते हैं। और उसकी वजह से जमीन की तरफ ये आतिशफिशा पहाड़ रोनुमा होते हैं। अब ये आतिशफिशा पहाड़ है क्या चीज, देखिए आमतौर पर ये होता है कि ये जो जमीन के अंदर आपका जब सबसे ऊपर वाली सरफेस जिस पे हम लोग रह रहे हैं इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे होता है मेंटल और मेंटल के अंदर होता है कोर। ये जो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यानी कि जमीन के नीचे क्रस्ट में हम रहते हैं, क्रस्ट के फौरन नीचे एक मेंटल का हिस्सा होता है, वो होता है सेमी लिक्विड।
अल्लाह हम सबको आफियत 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 अता करे, दुनिया की आग से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, जहन्नम की आग से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तेरे इशारे